अरपा रेडियो.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर पद्मा मणि।
गुप्त काल की देन, विशेषताएं एवं पतन के कारण।
और अब देखते हैं गुप्त काल की देन को। गुप्त युग यानी स्वर्ण युग की प्रमुख विशेषताएं। गुप्त काल में देश में शांति थी और प्रजा का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। इस काल में प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। इसी कारण गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त काल की देन का आकलन करें तो सबसे पहला नंबर आता है राजनीतिक एकता की स्थापना का। शक्तिशाली मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारत में अनेक भागों पर शक, पल्लव, कुषाण आदि विदेशी जातियों ने राज्य स्थापित कर लिया था। भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होकर लगभग 500 वर्षों तक इसी अवस्था में रहा। गुप्त शासकों ने भारतीय राज्यों को जीतकर राजनीतिक एकता प्रदान की और एक बार पुनः भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। गुप्त शासकों ने वर्षों की अशांति और विदेशी शासन को समाप्त करके देश में एक संगठित और स्वदेशी राज्य स्थापित किया। दूसरा, कुशल शासन प्रबंध। गुप्तकालीन शासकों का शासन प्रजा हितैषी था। योग्य गुप्त सम्राटों ने भारत में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना की, जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान स्वतंत्र रूप से आ जा सकता था। कर भी कम वसूले जाते थे। न्याय व्यवस्था कठोर नहीं थी, फिर भी चारों ओर शांति और व्यवस्था व्याप्त थी, जिसके परिणाम स्वरूप साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति हुई। चीनी यात्री फाहियान ने भी लिखा है कि भारतवर्ष के लोग सुखी और समृद्ध हैं। तीसरा, शांति एवं आर्थिक समृद्धि का युग। फाहियान के विवरण से स्पष्ट होता है कि गुप्तकाल की प्रजा आर्थिक रूप से संपन्न थी। प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी। गुप्तकाल की स्वर्ण मुद्राएं और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध यह सिद्ध करते हैं कि देश में आर्थिक स्थिति अच्छी थी। गुप्त सम्राटों ने कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। सामरिक महत्व के बंदरगाहों से व्यापार तीव्र गति से बढ़ा, जिससे प्रजा की आर्थिक वृद्धि हुई। चौथा, आदर्श सामाजिक जीवन। गुप्तकाल की जनता में उच्च कोटि की नैतिकता एवं सदाचार विद्यमान था। वे पवित्र एवं सादा जीवन व्यतीत करते थे। जनता धर्मपरायण थी, उसमें धार्मिक उदारता की भावना थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता थी। यात्रियों के लिए सड़कों के किनारे धर्मशालाएं बनी रहती थी, जिसमें यात्री विश्राम कर सके। फाहियान ने पाटलिपुत्र में एक चिकित्सालय देखा, जहां निर्धनों, पतितों और दुखियों की चिकित्सा बिना पैसे लिए की जाती थी। पांचवा है, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। गुप्त काल के राजाओं ने वैदिक धर्म को अपनाया और हिंदू धर्म फूलने फलने लगा। कर्मकांड और आडंबर को दूर करने का प्रयत्न किया, परिणाम स्वरूप जनता फिर से हिंदू धर्म को स्वीकार करने लगी। ब्राह्मणों का सम्मान पुनः होने लगा। हिंदू धर्म एक बार फिर उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। छठा, धार्मिक सहिष्णुता। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासकों ने अपने शासन काल में धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, जिसे गुप्त शासक खुले हाथ से दान देते थे। समुद्रगुप्त का सेनापति और चंद्रगुप्त का एक बड़ा मंत्री वीरसेन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गुप्त शासकों की धार्मिक सहनशीलता की चीनी यात्री फाहियान ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सातवां, साहित्य की उन्नति। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। गुप्त काल में संस्कृत राजभाषा थी, अतः संस्कृत भाषा को संरक्षण मिलने के कारण इस भाषा में महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई। सबसे महत्वपूर्ण नाम कालिदास का है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशी, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत और रघुवंश नामक काव्य और कुमार संभव नामक खंड काव्य की रचना की। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुंतम नामक 2 नाटक लिखे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशीर्ण था। इस काल में विष्णु शर्मा, भारवी, दंडिन और अमर आदि प्रसिद्ध लेखक हुए। 8वां है वैज्ञानिक उन्नति। गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति हुई, विशेषकर गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में। आर्यभट्ट गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी था। उसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं ज्योतिष ने नक्षत्र विद्या, नक्षत्रों के मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर अनेक ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने रेखा गणित, बीज गणित आदि के विषय में महत्वपूर्ण रचनाएं की। 9वां है कला की उन्नति। गुप्त काल में कला के प्रत्येक क्षेत्र में बहुमुखी विकास हुआ। डॉक्टर वी ए स्मिथ के शब्दों में 3 मुख्य संबंधित कलाएं अर्थात वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला असाधारण रूप से उच्च स्थान पर पहुंच गई थी। 10वां है शिक्षा की प्रगति। गुप्त काल में तक्षशिला, सारनाथ और नालंदा के विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध थे, जहां विदेशी छात्र भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासकों ने की थी। गुप्त शासक विश्वविद्यालय को खुले हृदय से दान देते थे। 11वां बृहत्तर भारत का निर्माण। गुप्त काल में व्यापार, वाणिज्य एवं धर्म प्रचार हेतु भारत का अन्य देशों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। भारतीयों ने जावा, सुमात्रा, बाली, मलाया, बर्नियो, कंबोडिया आदि देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति ने इन देशों को अत्यधिक प्रभावित किया, जिससे बृहत्तर भारत की स्थापना हुई। और आइए आप जानें गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों को। पहला, अयोग्य उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। स्कंदगुप्त निसंतान था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसका सौतेला भाई पुरु सम्राट बना। पुरुगुप्त के सम्राट बनते ही गुप्त साम्राज्य में अव्यवस्था प्रारंभ हो गई। अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी गुप्त साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहे और गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। दूसरा, वंशानुगत नियुक्तियां। गुप्त सम्राट ने कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों को नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। अयोग्य कर्मचारियों की नियुक्ति होने से शासन व्यवस्था शिथिल हो गई और गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तीसरा, सामंत वर्ग। गुप्त सम्राटों ने अपने कर्मचारियों की सेवा से खुश होकर उन्हें जागीरें प्रदान कर दी। कुछ समय पश्चात जागीरदार सामंत बन गए और राज्य हित को भुलाकर स्वार्थ पूर्ति में लग गए। इस प्रकार सामंतों के स्वतंत्र शासक के रूप में आविर्भाव ने गुप्त साम्राज्य को क्षीण कर दिया। चौथा, हूणों के आक्रमण। कुमारगुप्त एवं उसके पश्चात हूण निरंतर भारत पर आक्रमण करते रहे। स्कंदगुप्त के बाद के शासक हूणों का सामना न कर सके। हूण नेता तोरयाण और उसके पुत्र मिहिरकुल ने गुप्त साम्राज्य की नींव हिला दी और वे गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बने। पांचवा, अर्थव्यवस्था का निर्बल होना। 5वीं शताब्दी के अंत तक पश्चिमी भारत पूरी तरह से गुप्त साम्राज्य से अलग हो चुका था। फलस्वरूप व्यापार और वाणिज्य से प्राप्त होने वाले राजस्व की हानि हुई और गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई। छठा, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष। गुप्त काल में उत्तराधिकार के निश्चित नियम नहीं थे। ऐसी स्थिति में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिससे गुटबंदी, षड्यंत्र, कलह एवं युद्ध की स्थिति बन जाती थी। इस उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। सातवां, विशाल साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य अत्यंत विशाल था। शक्तिशाली सम्राट कुशल सेनापति थे और साम्राज्य की रक्षा करने में समर्थ थे, किंतु स्कंदगुप्त के पश्चात निर्बल अयोग्य सम्राट साम्राज्य की रक्षा नहीं कर सके। आठवां, दृढ़ सीमांत नीति का अभाव। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त शासकों ने उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। विदेशी शक्तियों ने प्रोत्साहित होकर सीमा को आक्रांत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य विखंडित हुआ। नौवां, आंतरिक विद्रोह। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर अनेक प्रांतीय शासक स्वतंत्र हो गए। मंडेसर यानी मंदसौर, मालवा शासक तथा कन्नौज के मौखरी वंश ने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। दसवां, अंतिम गुप्त सम्राटों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। गुप्त काल के अंतिम सम्राटों ने बौद्ध धर्म अपना लिया एवं अहिंसात्मक नीति का पालन करने लगे। इसलिए वे सेना और सुरक्षा की ओर से उदासीन हो गए और अपने साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रहे।
arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।